आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ACCC ने कहा है कि कोल्स के डाउन डाउन प्राइस कैंपेन पर फेडरल कोर्ट का फैसला सभी रिटेलर्स के लिए एक चेतावनी है कि वे कीमतों और डिस्काउंट से जुड़े दावों में पारदर्शिता बरतें और सटीक रहें। फेडरल कोर्ट ने पाया कि सुपरमार्केट ने ग्राहकों को नकली छूट दिखाकर गुमराह किया। जस्टिस माइकल ओब्रायन ने मामले में जांचे गए 14 में से 13 प्रमोशंस को असली डिस्काउंट नहीं माना। ACCC का आरोप था कि कोल्स ने पहले कुछ उत्पादों की कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ाई, फिर उन्हें थोड़ा कम करके भी मूल कीमत से ऊपर रखा और बाद में उसे स्पेशल ऑफर के तौर पर प्रचारित किया। ACCC की चेयर जीना कैस गॉटलिब ने कहा है कि ये फैसला कीमत तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगा और दूसरे रिटेलर्स के लिए इससे सबक भी मिलेगा। जुर्माने की राशि पर फैसला बाद में होगा। कोल्स पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इसी तरह का ACCC का मामला वूलवर्थ्स के खिलाफ भी चल रहा है, जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। इस बीच विपक्षी गठबंधन का कहना है कि अगर वे अगला चुनाव जीतते हैं तो वे गैर नागरिकों के लिए कुछ सरकारी सहायता योजनाओं में कटौती करने का प्रस्ताव लाएंगे। विपक्ष नेता एंगस टेलर ने अपने पहले बजट जवाबी भाषण से पहले कहा है कि गठबंधन गैर नागरिकों, जिनमें स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेसिडेंट भी शामिल है, की 17 तरह की सामाजिक सहायता योजनाओं तक पहुंच सीमित करेंगे। इनमें NDIS और पेरेंटल लीव जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। फिलहाल परमानेंट रेसिडेंट और प्रोटेक्टेड स्पेशल वीजा धारकों को NDIS की सुविधा मिल सकती है, हालांकि इसके लिए अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रीन्स नेता डेविड शूब्रिज ने कहा है कि ऐसी नीति ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा निष्पक्ष या बेहतर समाज नहीं बनाएगी। और विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन ने फेडरल सरकार के उस फैसले का बचाव किया है जिसके तहत विक्टोरिया सरकार की सबर्बन रेल लूप परियोजना के लिए 3.8 अरब डॉलर दिए गए हैं। वहीं क्रिसमिन्स ने कहा है कि देश की लगभग 31% आबादी न्यू साउथ वेल्स में रहने के बावजूद उनके राज्य को फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का केवल 17.7% हिस्सा मिलता है। क्रिसमिन्स ने कहा कि वे फंडिंग में इस अंतर को लेकर चुप नहीं रहेंगे और पार्टी से पहले अपने राज्य के हितों के प्रति वफादार रहेंगे। आलोचनाओं के जवाब में जेसिंटा एलन ने कहा कि दूसरे बड़े राज्यों की तुलना में विक्टोरिया के पास टैक्स से राजस्व जुटाने के विकल्प कम हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा है कि हंटा वायरस प्रकोप से प्रभावित क्रूज जहाज पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे कल ऑस्ट्रेलिया लौट सकेंगे। उन्होंने पुष्टि की है कि विदेश मंत्रालय ने यात्रियों को वापस लाने के लिए उपयुक्त विमान की व्यवस्था कर ली है। ये यात्री आज रात नीदरलैंड से रवाना होंगे और शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। मार्क बटलर ने कहा कि लौट रहे यात्रियों में फिलहाल किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनकी दोबारा जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें 3 सप्ताह के क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में उनके सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया। करीब 9 वर्षों में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चाइना यात्रा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में चाइना का दौरा किया था। बीजिंग के कई लोगों ने उम्मीद जताई है कि दोनों नेताओं की मुलाकात सकारात्मक नतीजे लेकर के आएगी। और अंत में खबरें भारत से। भारत में बढ़ते ईंधन संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्क फ्रॉम होम नीति को बढ़ावा देने की अपील के बाद देश के कई राज्यों में असर दिखने लगा है। त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू कर दी है। नए नियम के तहत ग्रुप सी और डी के केवल 50% कर्मचारी ही रोज दफ्तर जाएंगे, जबकि बाकी घर से काम करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को प्राथमिकता देने और मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार कर रही है। सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार फिलहाल देश भर में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की कोई नीति नहीं ला रही है। इसी के साथ 14 मई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।